मुंबई से थोड़ी दूर आरफ कबीर के साथ अपने वेयरहाउस पर था। वहां उन्होंने उन चारों आदमियों को किडनैप करके रखा था जिन्होंने आयु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उनमें से एक आदमी को आरफ बुरी तरह घायल कर चुका था। जिस आदमी ने आयु को थप्पड़ मारा था उसके हाथ और गाल को चाकू से घाव देने के बाद आरफ खड़ा हुआ और फिर से कहा, उसके ड्रेस की एक स्लीव फटी हुई थी, बेहतर होगा वो भी बता दो। आरफ के इस तरह उन चारों को टॉर्चर करने पर कबीर को थोड़ा इरिटेशन हो रहा था। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोला, सर भी क्या इन चारों के साथ गेम खेल रहे हैं, ये लोग बात करना तक डिजर्व नहीं करते। अब तक मैं इनका काम तमाम कर चुका होता अगर आरफ सर के दिल में इन्हें टॉर्चर करने का ख्याल नहीं आया होता। कबीर के हाव भाव को नोटिस करते हुए आरफ ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, इस तरह इरिटेट होने से कुछ नहीं होगा, ऐसे आसानी से कैसे मार दूं, इन्होंने भी मेरी मिसेस खुराना को काफी दौड़ाया था। गो अहेड, कबीर ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। कबीर से बात करने के बाद आरफ ने उन चारों की तरफ देखा। वो कुछ कहता उससे पहले एक आदमी ने अपने साथी की तरफ इशारा करके कहा, जिसने उसे थप्पड़ मारा था उसी ने उसके कपड़े फाड़े थे, हम बस आराम से उसके कपड़े खोलने वाले थे लेकिन उसने होशियारी दिखाई और वो भागने लगी, इस चक्कर में उसकी ड्रेस फट गई। उस आदमी ने जिस मासूमियत से आरफ को सब सच बताया था उसे सुनकर कबीर ने अपना सिर पकड़ लिया। वो फिर से बड़बड़ाते हुए बोला, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, मौत सामने खड़ी है और ये कह रहा है हम आराम से कपड़े खोलने की कोशिश कर रहे थे, डिस्गस्टिंग। जैसे ही उस आदमी की बात खत्म हुई आरफ ने चाकू उसके सीने में लेफ्ट साइड घुसा दिया जहां दिल होता है। उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। उस आदमी को खांसी आने लगी और उसके मुंह से भी खून निकलने लगा। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया था। आरफ ने जिस हिसाब से उसे मारा था उससे साफ था कि उसकी बातों से उसे बहुत गुस्सा आया था। आरफ ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कबीर की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं होगा, तुम इन्हें ठिकाने लगा देना एंड मेक श्योर कि ऐसी मौत देना कि आखिरी दम तक इनके चेहरे पर मौत का डर होना चाहिए। कबीर ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। आरफ वहां से चला गया था। उसके जाते ही कबीर ने अपने एक आदमी को कहा, चलो आज इनकी रेस की वीडियो शूट करते हैं। उस आदमी ने अपना कैमरा ऑन किया। उसके बाद कबीर बचे हुए उन तीन आदमियों के पास जाकर बोला, चलो एक रेस करते हैं, जो तुम तीनों में सबसे आगे दौड़ेगा वही बच पाएगा। मेरे थ्री काउंट करने पर तुम तीनों अपनी रेस शुरू करोगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस वेयरहाउस के डोर से बाहर निकलना है। जो अगले 5 मिनट में बाहर निकल पाएगा उसे मैं जाने दूंगा। साथ ही रेस जीतने वाले को इनाम के तौर पर 50 लाख रुपए भी दूंगा। कबीर की बात सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर कबीर ने अपने आदमियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने मेन डोर की तरफ नजर दौड़ाई तो वो ज्यादा दूरी पर नहीं था। अगर उन्हें चोट नहीं लगी होती तो वो दौड़कर उस दरवाजे को 3 मिनट में पार कर सकते थे, लेकिन इस वक्त उन तीनों के ही पैर और शरीर के अन्य भागों पर चोट लगी हुई थी। घायल होने के बाद जीतना तो दूर की बात है, लड़खड़ाते हुए भी वो 5 मिनट में वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। उनमें से कोई कुछ कहता उससे पहले कबीर ने तेज आवाज में कहा, ऑल द बेस्ट प्लेयर्स, 3, 2, 1। जैसे ही कबीर ने काउंटिंग खत्म की उसने हवा में एक फायर किया और वो तीनों लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। इस वक्त उनके चेहरे पर जो मौत का डर आरफ देखना चाहता था वो साफ नजर आ रहा था। कबीर को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके साथ चलते हुए 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स उनका वीडियो शूट कर रहे थे। 5 मिनट पूरे होने को आए थे लेकिन अब तक वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें समझ में आ गया कि 5 मिनट पूरे हो गए हैं तो वो कबीर की तरफ मुड़े और नीचे गिरते हुए चिल्लाकर बोले, प्लीज हमें जाने दो। कबीर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने गार्ड्स को इशारा किया। उनके पास शार्प शूटर मौजूद थे जिन्होंने उन तीनों के माथे के बीचों बीच पॉइंट करके गोली चलाई थी। अगले ही पल उन तीनों की लाश जमीन पर गिरी हुई थी। चलो ये सब क्लीन करवा कर वीडियो मुझे भेज देना, काफी रात हो गई है और मुझे सोना भी है, कबीर ने काफी लापरवाही से कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही सारे आदमी अपने काम पर लगा चुके थे। उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी, आखिर वो लूथरा फैमिली के मुंबई के सभी इलीगल कामों से जुड़े हुए थे। हाँ, जब भी आरफ को जरूरत होती थी तो कबीर उन्हें बुला लेता था। वहीं आरफ के कहने पर अयान आयु के कमरे में पहुंचा। अयान रूम में गया तब आयु सो रही थी। वो चुपचाप आयु के पास बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। अयान ने आयु के चेहरे की तरफ देखा, ना चाहते हुए भी उसे वो सब याद आ रहा था जो कुछ देर पहले आरफ ने उसे बताया था। अयान पिछले कई सालों से आयु को जानता था और इतने वक्त से उन दोनों के बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता था। अयान ने आयु के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम ठीक कहती थी जब कली देहरादून बेस्ट था, हमारी लाइफ वहीं पर अच्छी थी और हम दोनों को ही मुंबई आने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। मुंबई आने के बाद तुम कहीं खोसी गई और अनु के जाने के बाद तो ऐसे लगता है कि तुम वो आयु रही ही नहीं। इतना कुछ हो गया लेकिन एक बार भी नहीं बताया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? नींद से उठने पर मैं तुमसे इस बात के लिए बहुत सारा लड़ने वाला हूँ। अयान वहां बैठकर आयु से बातें कर रहा था तभी उसके मोबाइल की नोटिफिकेशन बेल बजी। उसने तुरंत अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें साक्षी का मैसेज आया हुआ था। मैसेज देखने के बाद अयान का चेहरा उतर गया। साक्षी ने मैसेज में लिखा था, हम कल शाम तक दिल्ली वापस जा रहे हैं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जब तक यहाँ रहूंगी तुमसे मिलती रहूंगी, लेकिन देखो ना, मिलना हुआ ही नहीं। सो जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ और कब मिलना है वो मैसेज में बता देना। साक्षी का मैसेज पढ़ने के बाद अयान ने उदास चेहरे के साथ कहा, तो आप वापस जा रही हैं? मुझे इसी दिन का डर था, टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला। और देखो अब आप वापस जा रही हैं और मुझे अपने दिल की बात बताने का मौका नहीं मिला। अयान अपने दिल की बात बोल रहा था, इस बात से बेखबर कि आयु उठ चुकी थी। वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रही थी। आयु बिस्तर से उठकर बैठी और आंखें छोटी करके अयान की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है मगरमच्छ, तुमने अपनी लेडी मगरमच्छ ढूंढ भी ली और मुझे नहीं बताया। अगर वो तुम्हें छोड़कर जा रही है तो जाकर उसे अपने दिल की बात बताओ, ना कि देवदास की तरह यहाँ बैठकर गम मनाओ। अगर ऐसे ही बैठे रहे तो मुझे तुम्हारे लिए एक बियर की बोतल लानी पड़ेगी। रहने दो, उसके लिए तुम्हारे मिस्टर खुराना ही काफी हैं, अयान ने मुंह बनाकर जवाब दिया। फिर उसने आयु की तरफ देखकर कहा, वैसे तुम कब से मेरी बातें सुन रही हो? ऐसे इस तरह छुपकर बातें सुनना गलत बात होती है। अयान जानबूझकर आयु का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। अयान नहीं चाहता था कि वो कल रात के बारे में बात करके आयु को अपसेट करे। गलत बात है तो गलत ही सही, आयु ने हल्का मुस्कुराकर कहा। फिर वो इधर उधर देखने लगी, उसकी नजरें आरफ को ढूंढ रही थी। आयु की नजरों को पढ़ते हुए अयान ने कहा, भाई थोड़े टाइम के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास बैठने के लिए कहा है, आ जाएंगे तो बात कर लेना।
पहली बार आयु ने अयान के मुंह से आरफ के लिए भाई शब्द सुना था। उसने अयान को तिरछी निगाहों से देखा और उसके हाथ पर हल्का मारते हुए कहा, अब बड़ा भाई प्रेम उमड़ रहा है तुम्हारा, पहले तो हमेशा उसे नाम से ही बुलाते थे। वैसे मैंने काफी बार तुम्हारे सामने तुम्हारे ही भाई की बुराई की है, बोलते हुए आयु ने अजीब चेहरा बनाया। फिर उसे याद आया कि वो पहले अयान के सामने बार बार अनु की मौत का बदला लेने की बात कहती थी। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और उदास होकर कहा, तो तुमने सही कहा था, आरव ने अनु को नहीं मारा था। चलो तुम्हें यकीन तो हुआ, वैसे मैंने खुद जाकर उनसे इस बारे में पूछा था। वो चाहे कितना भी गुस्सा कर लें, रूड हो जाएं या उनमें कितना भी एरोगेंस क्यों ना हो, पर वो कभी झूठ नहीं बोलते, अयान ने जवाब दिया। वहीं आरव दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। कहीं ना कहीं उसे जेलस फील हो रही थी कि आयु आरव के बजाय अयान से इतना खुलकर बात कर रही थी। यहां तक कि उसने पहले ही इस बात को अयान के सामने बता दिया था कि उसे आरव पर शक है। आरव धीमे कदमों से अंदर आया और सख्त आवाज में कहा, अच्छा तो तुम पहले से जानते थे ये मुझे अपनी बहन का मर्डरर समझती है? तुम मेरे भाई हो या इसके जो इसका साथ दे रहे थे? ये मेरा भाई नहीं, मेरा फ्रेंड है। वन मोर थिंग, इसने मेरा साथ नहीं दिया, आयु ने मुंह बनाकर जवाब दिया। आरव ने आयु की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, ठीक है मान लेता हूँ इसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर देवर भाई के समान ही होता है, तो आगे से तुम इसे अपना फ्रेंड नहीं भाई समझकर ट्रीट करोगी। आरव की बातों से अयान समझ गया था कि उसे अयान से जेलस फील हो रही है। उसने हैरानी से कहा, सीरियसली भाई आप मुझसे चल रहे हो? मेरे पास ऑप्शन था, मैं चाहता तो आयु को पहले ही पटाकर इससे शादी कर सकता था। आपको इसे जानते हुए ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए होंगे, जबकि मैं इसे पिछले 6 सालों से भी ज्यादा टाइम से जानता हूँ, अयान का साथ देते हुए आयु ने कहा। तुम भी किससे बात कर रहे हो? इसे हर एक चीज से जलन होती है, ये तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे दुनिया इसी की है और इसके अलावा कोई इसकी चीज की तरफ देखे भी नहीं। दुनिया और बाकी चीजों का पता नहीं, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी तरफ मैं किसी को नहीं देखने दूंगा। अगर तुम्हें कोई गलत निगाहों से देखने और छूने की भी कोशिश करेगा तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आरव ने सर्द आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए आरव और आयु को भी डर लगने लगा। आयु आरव के लहजे से भले ही ना समझी हो, पर अयान अच्छे से समझ रहा था कि जिन 4 आदमियों ने आयु के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, जरूर उन्हें आरव ने अच्छा सबक सिखाया है। अयान अपने ख्यालों में खोया था तभी फिर से उसके फोन पर नोटिफिकेशन बेल बजी। एक्चुअली उसने साक्षी का मैसेज पढ़ लिया था, फिर भी उसका रिप्लाई नहीं किया था, तो साक्षी ने उसे वापस मैसेज किया था। नोटिफिकेशन विंडो से ही साक्षी का मैसेज देखकर अयान के चेहरे पर उदासी के भाव थे और आंखें नम होने लगी। आप आ गए हैं तो मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना है, अयान ने धीमी आवाज में कहा और वहां से जाने लगा। उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर आरव और आयु दोनों ही हैरान थे।